आप लोगों के जचे न जचे बात अलग है, साधक को ऐसी बात साफ साफ मिलती नहीं है। हमने बहुत टक्कर खाई है, ज्यादा जोरदार मेरे लालसा नहीं लगी है, परंतु नहीं थी ये बात भी नहीं। बहुत भटका हूं, ऐसी साधक की बात मिल जाए ऐसी तो महाराज मर मिटे इसकी प्राप्ति के लिए, अगर वह सती लालसा हो। एक ही बात ये, तो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी मानते हो, इसमें बहादुरी नहीं, वो नहीं है अभी, और फिर भी नहीं रहेगी तो नहीं है, मिलने पर भी आधा बनते वर्तमान तथा जो आदि में नहीं अंत में नहीं वर्तमान में भी नहीं है, है केवल बहम है कि जिससे असली तत्व से वंचित रह जाओ उसके लिए बढ़िया उपाय है, वो है मानना, उसको महत्व देना। है उस तत्व को प्राप्त कर लेना, प्राप्त है ही है, उसमें केवल नहीं से विमुख होते ही प्राप्ति है उसकी, क्यों प्राप्त अप्राप्त तो होता नहीं। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लेते हैं, ये अप्राप्त है प्रतीति है, ये दिखती है मिलती नहीं है। मृग तृष्णा के जल का दृष्टांत दिया है संतों ने, मृग तृष्णा का जल दिखता है, किसी की तृष्णा शांत नहीं हुई, केवल भागते रहे, ऐसे ये मृग तृष्णा के जल की तरह है, किसी की तृष्णा शांत नहीं हुई। कभी किसी को तृप्ति हुई नहीं अभी तक, अब कैसे हो जाएगी। और इतनी उम्र तक संग्रह करना है, सुख भोगना है, ये हमने नमूना देख लिया, ऐसी कोई बात नहीं जो नमूना हमने देखा ना हो। एक दो रुपया भी जिसके पास हुआ है उसने पैसों का नमूना तो देख लिया, लाखों करोड़ों को उसी नमूना तो वही है, ऐसे भोग थोड़ा बहुत जिसने भोगा है भोग का नमूना देख लिया है। वैसे तृप्ति नहीं हो तो अब तृप्ति कैसे हो जाएगी। धातु चीज तो वही है, एक रुपया हो चाहे करोड़ रुपया हो, तो ये संग्रह और भोग का जो सुख है ये हमने देखा है, अब फिर बहम क्या रह गया, ये रहने वाला नहीं है। आज मेरे मन में एक बात आ रही थी, उसी पर मैं कहता था कि बहुत स्पष्ट बात, बड़ी सीधी सरल बात है, आपके सांसारिक पदार्थों की, भोगों की और स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा है तब तक आप सब में बंधे हुए हो, और आपकी मर्यादा छोड़ नहीं सकते, छोड़ो तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, और जब आपका ध्येय इनसे अतीत का हो जाएगा सब बंधन कट जाएगा, अब कोई आप पर बंधन नहीं रहेगा एकदम। जो मर्यादाएं खास है आश्रम की है, वर्ण की है, देश की है, संप्रदाय की है, जो आवश्यक मर्यादा है, उन मर्यादाओं का भी बंधन आपके नहीं रहेगा बिल्कुल। बात समझ में नहीं आती ऐसी कही भागवत में, विप्रात द्विषट गुणुदात अरविंद नाव पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, बारह गुण युक्त ब्राह्मण हो पूरा, मानो जन्म से भी और आचरणों से भाव से भी पूरे अच्छे गुण है उसमें, परंतु भगवान के चरणों से विमुख है, और एक चांडाल है मेहतर है, और वो भगवान का नाम लेता है भगवान के आश्रित है, तो वो चांडाल उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, ये भागवत का वचन है मेरा है। सिद्ध क्या हुआ कि वो कितना ही ऊंचा ब्राह्मण है, कितना ही यज्ञ है, कितना ही दान है, कितना ही वेदाध्ययन है, परंतु उसकी दृष्टि नाशवान पदार्थ पर है, तो वो ऊंचा अपना क्या काम आएगा, अंत में नाश होगा ही। और जिसकी दृष्टि अविनाशी पर है वो कितना ही छोटा है, कितना ही नीच है, कुल से, जाति से, वर्ग से, आश्रम से, योग्यता से, धनादिक संपत्ति से, व्यवहार से, सब तरह से नीच है, तो दृष्टि उसकी परमात्म तत्व पर है, तो उसके सामने भी क्या है, ठेठ ब्रह्म लोग तक चले गए तो क्या होगा। नहीं तो ये श्लोक में देखता कैसे लिख दिया श्लोक, अहो बताओ स्वस्थ तो गरियान स्वप्न होता है गरियान कितने विलक्षण बात बताइए, और कितना आदर है ब्राह्मण का। भगवान कहते हैं अग्नि में आहुति देने से मैं इतना खुश नहीं होता हूँ जिससे ब्राह्मण के मुख में भोजन दिया तो मैं खुश होता हूँ, वो आहुति में जितना राजी मैं आहुति से नहीं होता इतना राजी। और उन ब्राह्मणों के प्रतिकूल जो मेरी भुजा हो तो इसको काट कर फेंक दो, इतनी जिसकी महिमा भगवान कहते हैं स्वयं उसी भागवत में, और उसी भागवत में लिखा उसका समझ कैसे बैठे, कि भाई बैठे सीधी बात है कि नाशवान आपका ध्येय है कि आपका ध्येय अविनाशी है, सीधी बैठ जाएगी। विनाशी ध्येय है तो आप बड़े पद पर हैं, बड़ी अच्छा है, स्वर्ग पर हैं, बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे हुआ क्या, लक्ष्य तो आपका विनाशी है तो क्या हुआ, ऊंचे हो गए तो ऊंचे से भी उत्क्षेपे यद क्षिपति तत्पर करो होती लज्जा, ऊंचे से गिरोगे पतन होगा तो भैया और गलती हो जाएगी। केवल चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है हमें, ऐसा भले किसी जाति का है, किसी वर्ण का है, किसी आश्रम का है, कैसी अवस्था है, कैसी योग्यता उसमें नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, संसार में कुछ उसका कोई महत्व नहीं है, परंतु तो चाहता है केवल परमात्मा को तो परमात्मा उसको चाहते हैं। आ ब्रह्म गुणालो का पुनरावर्ति नो दुनो माओ पेत कुंते पुनर्जन्म न विद्यते, कितनी विलक्षण बात है। तो अपना ध्येय लक्ष्य केवल चिन्मय हो, जड़ का नहीं हो, नाशवान का ध्येय नहीं, लक्ष्य हमारा नहीं हो, तो कैसे उत्साह से चले, बड़े भारी उत्साह से चले, सच्ची चीज के लिए सोचते हैं, सच्ची चीज का अवसर है, अधिकार है, जरूर प्राप्त होने वाली चीज है। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राघव विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, बिगाड़ नहीं होता इसमें, लाभ ही लाभ होता। तो इस बात का उद्देश्य रखे सामने तो कभी ढिलाई नहीं आएगी, किंचित बात नहीं आएगी, दिन प्रतिदिन धृत्युत्साह समन्वित रहेगा, धैर्य उत्साह हरदम, क्योंकि सच्ची बात के लिए लगते हैं हम, जो है वास्तव में मिलेगी जरूर, है नहीं मिटने वाली है, मिले न मिले पता नहीं, मिल जाती रहेगी नहीं। इन दोनों बातों का आप ख्याल करो, खूब विचार करो, ठीक ठीक दिखती है बात एकदम। तो नहीं कहता हूं परमात्मा से विमुखता है वो पतन है ही, ये कहता हूं। शिक्षा क्या काम की है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, कोरे अक्षर पढ़ लेना कोई शिक्षा नहीं है। बंदर भी नाचता है, हाथी नाचता है, बाघ भी नाचता है, ये पशु है बड़े निकृष्ट अभी भी नाचते हैं, कुत्ता भी कहता है, बैल भी कहता है, किसे चोरी की पकड़ लेता है, यही तो शिक्षा है। जो उतनी होती ही नहीं है, मैं शिक्षा को पतन नहीं कहता हूं, मैं कहूं आपका उद्देश्य पतन का है, चाहे विद्या अध्ययन करो चाहे कुछ भी करो, विनाशी आपका उद्देश्य है तो पतन करने वाला है ही। उद्देश्य आपका चेतन तत्व है तो कभी पतन नहीं होगा। बोलो। इसलिए करता है, मालूम नहीं रहता, उसी अंधेरे को मिटाना है मेरे, और कुछ नहीं, वही अंधेरे मिटाना चाहते हैं। किस लिए पढ़ता है, पढ़कर क्या करेगा? मैं तो बहुतों से पूछता हूँ, साधु हो जाते उनसे पूछता हूँ कि तुम साधु क्यों हुए, बढ़िया उत्तर नहीं मिलता। पढ़ाई करो, मैं मना थोड़ा ही करता हूँ पढ़ाई का, मैं तो उद्देश्य की तरफ कहता हूँ। मेरा प्रश्न आया कि हम फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो हमारी प्रगति कैसे होगी, हम उद्योग कैसे करेंगे, ये प्रश्न है हमारे मूल में। उसका उत्तर दिया है कि कामना है वो उद्देश्य नहीं हो सकता, उद्देश्य होता है वो नित्य होता है, अनित्य होती वो कामना होती। देखो मैं जहां से बोलता हूं वहां स्थित होकर तो आप देखो तो समझोगे, मैं तो दूसरी दिशा से बोल रहा हूं, आप और जगह बैठे प्रश्न करोगे नहीं समझ सकोगे, कैसे समझोगे? ये शिक्षा को पतन कहता है, झूठी बात है। मैं जहां कह रहा हूं वहां आकर आप देखो आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो अविनाशी है उसको, उसके सामने सबके सब रद्द दी। आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तन, भगवान ने हद कह दिया, उसी से क्या चीज है ब्रह्म लोक, सबसे ऊंचा बड़ा सुख वहां पर। अरे गृहस्थ में रहे तो शरीर गए भाई, तुम थोड़ी गृहस्थ में रहते हो, तो गृहस्थ में कौन कह सोचे हो साधु? अगर ये बहम है कि साधु होने से हो तो देरी क्यों करते हो? अरे माँ बाप भी मर जाएगा, आप ही मर जाओगे तो आज मर जाओ तो कौन करेगा, कौन करेगा सेवा बताओ? आप मेरी बात को समझो, मैं निषेध नहीं करता हूँ सेवा को, कहता हूँ करो सेवा, आजकल सेवा करते नहीं है वो बुरी लगती है हमें। सेवा करने से मोह कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, लेने की इच्छा से होता है मोह, पक्की सिद्धांत की बात है। दो दो चार होते हैं, पांच दो तीन होते ही नहीं, बड़े जोर से कहता हूँ सेवा करने से मोह मिटता है और आशा रखने से मोह बढ़ता है। माँ बाप कुछ दे देंगे, वाह वाह कह देंगे, लोगों में प्रसन्नता हो जाएगी, कई तरह का कूड़ा कचरा भर रखा है, इस वजह से मोह होता है। हमें तो केवल उनको सुख हो जाए इतना है, अपने कुछ नहीं लेना है, तिरस्कार हुए, अपमान हुए, डंडा पड़े, लोग निंदा करे, तो हमें तो उसे भगड़ना है, कभी मोह नहीं होगा। वो कहाँ होता है ये सोचो तो सही। देखो मैं आपसे क्षमा मांग कर बात कहता हूँ, इन बातों पर मैंने विचार किया है, मैंने अपना मथा महीनों नहीं वर्षों तक लगाया, इस वास्ते इधर उधर फैल हो नहीं सकती है बात। आप तत्काल कह दोगे मोह हो जाता है, ऐसा कितना करके देखा है आपने? नहीं तो काटो इस बात को, कल परसों फिर काट देना, अभी अभी काटो समझने के लिए, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कोई हार जीत नहीं, इस तत्व को समझने के लिए काटो। सेवा करना बड़ा भारी कर्तव्य है, परंतु सेवा किस लिए करते हो ये मेरा प्रश्न है, एक उद्देश्य क्या है आपका? हाँ जी, तो बस यही समझो, अपने अपने यही समझो, सबसे पहले यही समझो, तो इस वास्ते निस्वार्थ भाव रखो। अब क्यों कहो और क्यों सुनो, अभी शुरू कर दो, निष्काम भाव से सेवा करनी शुरू कर दो सुबह से शीघ्र। मेरी एक बात आई, वो आपको साफ साफ कह दूं, एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का, एक उद्देश्य संसार की धन संपत्ति वैभव लोक और परलोक स्वर्ग आदि प्राप्ति का, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। एक परमात्म तत्व की तरफ ही आपका उद्देश्य है, आप बड़े बड़े यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन करने वाले सबसे ऊंचे हो गए, सबसे ऊंचे हो गए जब आपकी दृष्टि नित्य तत्व पर हो गई, सबसे श्रेष्ठ हो गए। बड़े यज्ञ दान करने वाले, तप करने वाले, लाखों रुपया जिन यज्ञों में लिखे, ऐसे ऐसे यज्ञ है उनका ध्येय परमात्मा नहीं है, तो उन यज्ञों से कितने ही आप ऊंचे हो जिसके कोई माप तोल नहीं है, तुम केवल परमात्मा तत्व को चाहते हैं, हम बिल्कुल संसार से अलग बात है ये। और संसार जाएगा कहीं नहीं, और सच्ची बात तो यह है कि संसार के पदार्थ भोग ज्यादा आएंगे, प्रारब्ध से ज्यादा आएंगे, प्रारब्ध के अनुसार तो आएंगे, परंतु जितनी देर आपकी उपेक्षा होगी, उनका आदर नहीं होगा, महत्व नहीं दोगे, उतना आपका महत्व बढ़ जाएगा और वे चीजें आपके चरणों में आकर मिलेगी, घाटा नहीं पड़ेगा संसार का। अरे घाटा पड़ जाए तो घाटा ही घाटा पड़ा, घाटा में ही घाटा पड़ा, वो घाटा नहीं वाली चीज, घाटे में भी कोई परवाह नहीं। यज्ञार्थात गया, यज्ञ से नहीं कहा बाबा, यज्ञार्थ का अर्थ क्या होता है, यज्ञार्थ क्या होता है, यज्ञार्थ यज्ञ नहीं, यज्ञ के साथ अर्थ सब अर्थ क्या है, समझो। पर केवल यज्ञ सुरक्षा रखने के लिए, शोक लोक संग्रह के लिए, केवल मर्यादा के लिए यज्ञ किया जाए, कोई मतलब नहीं यज्ञ से, वो तो आपका यज्ञ हो जाए, पानी पिलाना यज्ञ हो जाएगा, रास्ता बताना यज्ञ हो जाएगा, किस तरफ जाओ, कहाँ पे लक्ष्मण झूला इधर जाओ, वो यज्ञ हो गया, पर अपने लिए नहीं, मेरी महिमा होगा, मेरा गुण गावे, मेरा श्री हो जाए, वो यज्ञ अर्थ नहीं हुआ, अपने लिए हुआ। भुंजते थे तो गम पापा ये पसंद थी आत्म कारणात्, अपने लिए पकाते, पापी कोरा पाप भक्षण करते हैं, यज्ञार्थ कर्म करे केवल यज्ञ के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञार्थात कर्म, यज्ञार्थ यज्ञ नहीं, यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, यज्ञार्थ से अन्यत्र बांधने वाला है, केवल यज्ञ के लिए ही किया जाए तो नहीं, यज्ञ मुक्ति देने वाला नहीं। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न जीज्या शक्य दृष्टवान से मांग था, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चीज्या न यज्ञ से न वेद यज्ञ ध्ययन दान क्रिया भी न तपो भी रुग्र वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यति तत्सर्वं विदन् विदित्वा योगी प्रस्थान अधिकों में कर जा सब कोई वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य जितना पुण्य कहा गया सबको अधिकों में कर जाता है। और बोलो केवल लक्ष्य परमात्मा का हो, कोई अब देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नाय मृणी से राजन, साफ साफ कहा है सुखदेव मुनि ने, परीक्षित सुनो, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम, शरणागत वत्सल भगवान के चरणों के सर्वात्मा शरण हो गया, देव ऋषि आप नृणाम पितृणाम न किं करो माँ बाप का ऋण नहीं रहा, पितरों का ऋण नहीं रहा, प्राणियों का ऋण नहीं रहा, मनुष्यों का ऋण नहीं रहा, देवताओं का ऋण नहीं रहा, ऋषियों का ऋण नहीं रहा, किसी का ऋण नहीं रहा। वो कहते तो माता पे सेवा करो, सबकी सेवा आ जाती है। देव ऋषि भूत आप ऋणाम पितृणाम न किंकर, नायम ऋणी है, वो किंकर नहीं, दास नहीं है, वो उनके ऋणी नहीं है। सर्वात्मनाय शरणम शरण्यंगतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम। अब सब छोड़कर एक भगवान के शरण हो गया, किसी का ऋण नहीं रहा, माँ बाप का दूसरा किसी का ऋण नहीं, असली रास्ते चल गया। अपना सुख लेता है, अपना सुख चाहता है, माँ बाप सेवा नहीं करता, पापी है। परमात्मा की तरफ चलने से कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है, जो श्राद्ध तर्पण से नहीं होता। इतना श्राद्ध तर्पण करने से इतना पवित्र नहीं होता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, और माँ का तो कल्याण हो जाता है, कितना ही पानी देकर और जीते सेवा करते और पिंड पानी देकर के भी कल्याण नहीं कर सकता आदमी। माँ का पिंड पानी दे सकता है, जीवे जीते माँ की सेवा कर सकता है, माँ की प्रसन्नता ले सकता है, कल्याण करते हाथ की बात नहीं। परमात्म तत्व में थोड़ी देर भी मन लग गया तो उसे लिए कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था और वसुंधरा पुण्यवती चतेन। ये वसुंधरा पृथ्वी है, उसके द्वारा पवित्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अपार संवित सुख सागरे में, अपार सुख सागर सच्चिदानंद परमात्मा है। लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेत, उस पर ब्रह्म जिसका चित्त लीन हो गया, उनकी माँ का कल्याण हो जाएगा, जन्म उसका सफल हो गया, माँ का जन्म सफल हो जाएगा। माँ के लिए बढ़िया बताया ये, तो माँ बाल के पालन पोषण में बहुत कष्ट देखती है, इस वास्ते जननी कृतार्थ। तो ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता, इतनी सेवा होगी, ऋणी किसी का ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा से पैदा हुआ और परमात्मा को प्राप्त हो गया, बाकी क्या रहा। उस परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई चलती है, वहां पहुंच गया, दुनिया मात्र की सेवा करता है। यथा तरोर मूल निशेष लेना, वृक्ष के मूल में जल खाद डाली जाए तो तृप्यंत तस्कंद भुजो उपशाखा, स्कंद भुजा शाखा रूप शाखा टहने और पत्ते फूल और फल सब तर हो जाते। यथा तरोर मूल निशेषन तृप्यंत तस्कंद भुजो उपशाखा, प्राणोपहारा से यथेन्द्रियाणी, इस प्राणों को अन्न जब देने से सब शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, सब अंगों को पोषण मिलता है। तथा सर्वारण वच्युते जा, ऐसे एक भगवान में लग जाए और संसार से मुख हो गए, दुनिया मात्र की बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। जिस परमात्मा संसार प्रकट हुआ है उस परमात्मा के शरण में लगने से दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। सर्वारणम सबका पूजन हो जाएगा। तो पुण्य भी कम नहीं है, माँ बाप की सेवा भी कम नहीं है, अपना उद्धार में भी कोई कम नहीं है, सुधार में भी कमी नहीं है। बोलो कोई शंका हो तो। जिनकी इच्छा रखते वो मिलता नहीं, मिलेगा तो रहता नहीं, ये बात पक्की अनुभव की है। मन चाह धन मिलता नहीं, मिल जाए तो रहता नहीं, वो रहे तो आप रहते नहीं, ये तो नहीं तो होगा ही। बोलो नहीं होगा क्या? केवल उत्कट अभिलाषा, ये लग जाने के पर फिर देरी का काम नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती है, जड़ता के त्याग से होती है। साधन करो, सब कुछ करो, परंतु उसको पुकारो प्रभु को, व्याकुल होकर पुकारो। इसमें जो शक्ति है वो साधन में शक्ति नहीं है, कई दिन साधन करो वो शक्ति नहीं, लेकिन बस उकताया जाए संसार से और हे नाथ पुकारो दे दीजिए। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो आयो आधे नाम। जहाँ निर्बलता हम हे नाथ मैं कुछ नहीं कर सकता, कि बेटा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे लिए करना कुछ करने का जब तक बल है तब तक करना है, और मन में हो जाए कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता तो कुछ जिम्मेवारी नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा कर्म का फल नहीं है। दो बात है, लक्ष्य केवल परमात्मा का हो, सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे आप, देवताओं से मनुष्यों से वर्ण में आश्रम में सबसे तेज हो जाओगे। लक्ष्य केवल परमात्मा को, महान शुद्ध महान पवित्र महान पुण्यात्मा हो जाओगे। और बड़ी भारी इसकी महिमा है, लोगों ने समझ रखी है साधन की महिमा, जप है ध्यान है कीर्तन है समाधि लगाना है, ये बढ़िया है, हम भी बढ़िया ही कहेंगे बढ़िया है, परंतु जड़ता का बिल्कुल आश्रय छूट जाए, एक परमात्मा के ले ले, इसके समान कोई नहीं। जितने साधन है जड़ता के द्वारा किए जाते हैं उनने सबसे बढ़ करके केवल चिन्मय की तरफ ही हमारी वृत्ति हो, और पुकार उठे उसके बिना रह न सके। पढ़े लिखे हो कैसे आप हो कोई परवाह नहीं, तो केवल उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा का बना ले, फिर भी अभी नहीं हो कुछ कमी रह जाए तो डरो मत, हमारा लक्ष्य यही है, चाहे कुछ भी हो वो पक्का हो जाएगा। सच्ची बात है, सच्ची रहेगी बिल्कुल ये बात। और बोलो कोई बात, अपने लिए दोष है, धन अपने लिए है तो दोष ये कोरा, बिना कामना किया पर धन अपना है तो दोष ये पूरा। बिना कामना किया वो अपना धन कैसे मानेगा, दुनिया में लोग कमाते हैं वो अपना मानते हैं, तो कर्तव्य कर लिया तो कर्म कर लिया, कर लिया कर लिया, तो प्राप्ति हो गई, तो कर्म करने से नहीं हुई है, प्राप्ति से हुई है, पर कर्म से हो गई तो हर्ज क्या हुआ, आपने कामना नहीं है तो धन अपना कैसे हुआ। और कामना हो जाए तो फल जाएगा, फिर निष्काम भाव से किया कैसे कह दिया, कि तमाशा है निष्काम भाव, क्या निष्काम भाव होता है क्या नहीं होता ख्याल नहीं होता, निष्काम भाव होने पर ममता नहीं रहती भैया, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। गुरुवस्वौ वन्दे नन्दातु नमः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो परमात्मने जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय राम
राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जून 1982 को प्रातः 8:30 बजे स्वर्गाश्रम में गीता भवन नंबर 3 के बगीचे में दिया गया। राम राम राम।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम राम राम। परकृत्नमद्बन्धं परब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले। अठारहवें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहा अर्जुन ने। उसमें त्याग का वर्णन 12वें तक हुआ, 13वें श्लोक से 40वें श्लोक तक सांख्य का वर्णन हुआ। उसने ये बात बताई कि कोई भी किसी देश में प्राणी और वस्तु ऐसा नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। सब त्रिगुणात्मक है, क्यों प्रकृति है और प्रकृति के गुण है, उनसे ही सब संसार उत्पन्न हुआ है, तो सब के सब त्रिगुणात्मक है। उन तीन गुणों से ही अगाड़ी ये जन्म होता है। तो अगर प्रकरण चलता है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रांच परंतप, तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ये बात पहले भी भावार अगर ही आएगा, कर्तव्य समझ करके ठीक तरह से कर्म करे तो वो सात्विक त्याग हो जाता है, कर्म भी सात्विक होते हैं, वो नियत होते हैं, नियत। तो नियत कर्म करने से उसकी उन्नति हो जाती है। तो नियत किसको कहते हैं, एक शास्त्र विहित और एक निषिद्ध, दो भेद है। शास्त्र ने निषेध किया कि ये काम नहीं करना चाहिए मनुष्यों को, वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, और विहित नाम ऐसा करना चाहिए, वे कर्म सब विहित कहलाते हैं। उन विहित कर्मों में भी जिस वर्ण को लेकर, जिस आश्रम को लेकर, परिस्थिति देश काल को लेकर जो शास्त्र ने विशेष नियुक्ति कर दी कि उसको ऐसा करना चाहिए, वो नियत कर्म है। विहितों में भी वो नियत है। तो नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, अगर आएगा प्रकरण तो वो नियत कर्म क्या है, तो वो प्रकरण अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला जो त्याग का प्रकरण 12वें श्लोक तक चलाया, उसमें अपना निष्काम भाव मुख्य होना चाहिए, फिर वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। और यहाँ निष्काम भाव से कर्म करते हुए उन कर्मों से भगवान का पूजन किया जाए, ये भक्ति का मिश्रण कर दिया जाए, तो वे बहुत श्रेष्ठ साधक हो जाते हैं। उनकी महिमा गीता ज्यादा कहती है, योगी नाम भी सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सभे युक्त तमो मत। तो भक्ति का मिश्रण हो जाए, मई सर्वाणी कर्माणी सन्या से अध्यात्म तीर्था, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्या से मत परा। तो उसमें फिर अपने वर्ण धर्म आदि के कर्म करते हुए भगवान का पूजन करना, और एक केवल भगवान की भक्ति करना, उसमें भी वर्ण धर्म आदि का निषेध नहीं, परंतु पारमार्थिक क्रिया करते वो भक्ति है, उसका प्रकरण 56 से अगर चलेगा। तो यहाँ स्वभाव नीत कर्म कहते हैं, इसमें थोड़ा सा पहले विचार करना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चार वर्ण है, चार वर्णों के धर्म है। तो सामान्य धर्म होते हुए भी एक विशेषता से नियत कर दिया कि ये नियत कर्म है, और वो नियत कर्म किया गया है उसके स्वभाव के अनुसार, इस बात से स्वभाव नियत कर्म कहलाते हो। स्वेन और स्वभाव जेन कर्म नानिबद्ध आया, स्वेन और स्वभाव जेन, तो वह स्वभाव से ही पैदा हुआ और स्वकर्म है, मानो स्वभाव के अनुसार ही शास्त्र ने उनके लिए कर्म बताए कि ये कर्म ब्राह्मण को करना चाहिए, क्षत्रिय को, वैश्य को, ये शूद्र को करना चाहिए, आज्ञा दी है। तो उनमें जैसा जैसा गुण है, जिन गुणों के कारण से जहाँ जहाँ जन्म हुआ है, उसके अनुकूल ही वे कर्म बताए गए, वो शास्त्र नियत कर्म है। और स्वाभाविक कर्म उसमें होते हैं गुणों के कारण से, तो स्वाभाविक गुण कर्म होते हैं उनका वर्णन अभी आता है गाड़ी। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणैः, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा उनके स्वाभाविक कर्म है, प्रविभक्त है, अच्छी तरह से विभक्त है, अलग अलग है उन कर्म। अब वो अलग अलग क्यों है, तो स्वभाव प्रभवेर गुणैः का गुणों से पैदा हुआ। तो सत्व गुण की जिसमें प्रधानता होती है वो ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, और जिसमें रजोगुण की प्रधानता होकर सत्वगुण गौण होता है वो क्षत्रिय के जन्म लेता है और रजोगुण की प्रधानता को लेकर तमोगुण गौण हो जाता है, वैश्य घर जन्म लेता है और तमोगुण की प्रधानता वाला शूद्र घर जन्म लेता है। तो उनके कर्म अलग अलग है, क्योंकि उनके स्वाभाविक कर्म अलग अलग है, उसका वर्णन करते हैं। तो समो दमस तप शौचम क्षांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नौ धर्म बताए ब्राह्मण के, मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, चोरी न करना, पराया हक अपने में आने न देना, समो दमस तप शौचम और तपस्या करना और शुद्धि रखना और क्षमा करना, अपराध कोई कर दे तो क्षमा कर देना, और सरलता सीधापन रखना। उस मार्ग में ब्रह्मचर्य पालन करना, समो दमस तप शौचम क्षांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम, शास्त्र का ज्ञान संपादन करना और विज्ञान नाम शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करने की विधि को समझना। जैसे यज्ञ आदि करना है तो शास्त्र में उनकी विधि को जानना और किस प्रकार से वो किया जाए उस विधि को विशेषता से जानना, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण के घर जन्मे उसमें ऐसे गुण रहते हैं और शास्त्र का वो अध्ययन करता है और यज्ञ आगादि करने की विधि है वो सांगोपांग ठीक तरह से विचार करके उनको जाने और करे। ऐसे ये नौ धर्म ब्राह्मण के लिए बताए गए स्वभावज। ऐसे क्षत्रिय के लिए शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भावस्थ क्षात्रं कर्म स्वभावजम। शौर्यम शूरवीरता, न्याय युक्त युद्ध करते हुए कभी भी डरे नहीं, वो भय नहीं है, शायद शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। तेज एक शक्ति होती है जिसके सामने दुराचारी भी दुराचार कर न सके, देवी संपत्ति में जैसा आया है तेज। शौर्यम तेज, क्षत्रियों का तेज होता है जिससे अन्यायी अन्याय से रुक करके न्याय युक्त चलने लगे, प्रजा ठीक मर्यादा में चले, ऐसा तेज होता है। और धैर्य होता है उनमें, क्षत्रिय होता है उसमें धीरज नष्ट नहीं होता। शरीर कट जाने पर, अंगों के कट जाने पर, मस्तक के कट जाने पर युद्ध करते हैं, वैसे ही बहुत विजय कर लेते हैं। शरीर कट गया, माथा कट गया, अब जिधर आओ उधर से तरवाज लग रही है, पता नहीं कौन है, अपने एक दूसरे हैं, ऐसे कबंध होते हैं भाई। मारवाड़ में उनकी बड़ी महिमा कम ध्वज कहलाते हैं। तो धैर्य होना का विलक्षण होता है और दाक्षम चतुरता होती है जिससे प्रजा को ठीक ढंग से रखे, अलग अलग बसा करके। यो युद्ध चार पला युद्ध में कभी पीठ न दिखावे, भागे नहीं, युद्ध से डरे नहीं। राम भगवान राम जी कहते हैं कि समर में अगर संकोच करा तो वो कुल कलंक ते पामर जाना। क्षत्रिय जाति जनि समर सका ना, समर में युद्ध में संकोच करता तो पामर रण रघुवंशी रघुवंशी कभी रण डरते नहीं। तो क्षत्रियों का ये स्वाभाविक काम है। और दानम देने का स्वभाव, देने का स्वभाव क्षत्रिय उदारता होती है। अभी विचार कर देखा जाए तो दान देने में वेश समाज विशेष है, कहीं भी धर्मशाला आदि है दान पुण्य है उसमें वेश विशेष है, पर वेशियों में दान का नाम नहीं लिखा है और दान लिखा है क्षत्रियों में। तो कारण क्या है, तो कुछ ऐसा असर मालूम देता है कि क्षत्रिय जो दान देते हैं वो बड़े खुले हाथ से देते हैं, दे देंगे, हाँ दे दो, लाख रुपया दे दो, वहाँ 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, इतनी जमीन दे दो, ऐसे क्षत्रियों को दान होता है। वेश्य दान तो देते हैं मगर कसा कसी से, ये मरे नहीं इतना इतना दे दो, बस गाय को चारा उतना ही दो कि मरे नहीं, पर तृप्त हो जाए अच्छी तरह इतना नहीं, मर तो नहीं रही, तो बस इतना काफ़ी है। तो ये कसा कसी देते, ये दान दान नहीं है, सो अच्छा नदारी के प्रश्न बहुत बढ़िया है ही, राज चल रहा है, बहुत ही सुंदर है, प्रशंसा है, पर विचार आया कि दान की बात वेश्यों में ज्यादा देखने में आती है। भगवान ने दान लिखा है क्षत्रिय के लिए, तो क्षत्रिय वो शूरवीर होता है, हृदय विशाल होता है, और ईश्वर भाव से शासन करना क्षत्रियों का है। और कृषि गोरक्ष वाणिज्य स्वभाव, जब ये स्वभाव में दान देना नहीं, संग्रह करने का स्वभाव है इनका। खर्चा कम हो और ठीक संग्रह करे, इसलिए वैश्य का स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक वृत्ति ऐसी होती है। और परिचर्या तुम चारों वर्णों की सेवा करना, अपने जो कारीगरी है, चतुराई है, बुद्धिमानी है, अपना उद्योग है, अपना परिश्रम है, वो इसमें लगाना कि चारों की सेवा करना, तीनों वर्णों की, चारों की भी। परिचर्या तुम सेवा करना मात्र शूद्र का धर्म, ये स्वभावज कर्म बताए। तो स्वभावज का मतलब स्वभाव से पैदा होते हैं, और इन कर्मों के पालन करने में उनको जोर नहीं लगाना पड़ता। ब्राह्मण अगर ब्राह्मणोचित कर्मों को करे तो उसको विशेष परिश्रम नहीं होगा, पीछे से संस्कार भी काम करेंगे, अभी से नए अभी चलेंगे। ऐसे क्षत्रिय वेश और शूद्र के लिए भी ऐसी बात है। आज विचार कर देखा जाए तो ब्राह्मण मात्र में ऐसे धर्म नहीं दिखते, तो क्षत्रिय वेश शूद्र में भी स्वभाव के धर्म नहीं दिखते उतने। तो उनमें समय कुछ बदल गया, कुछ वर्ण संकरता आ गई, समय आते आते गिरावट हो जाता, ऐसा हो गया, इस कारण से वो ठीक नहीं दिखते। परंतु एक बात है कि ब्राह्मण ब्राह्मण सब इकट्ठे किए जाए, ऐसे क्षत्रिय वेश शूद्र सबके सब इकट्ठे किए जाए, तो ब्राह्मणोचित कर्म समुदाय ब्राह्मण में जितना मिलेगा इतना आपके क्षत्रिय में शूद्र में नहीं। ऐसे क्षत्रियों में जितने शूरवीरता आदि जो गुण है, क्षत्रिय जाति को इकट्ठे किए जाए समुदाय के समुदाय, तो उनमें क्षत्रियोचित कर्म वाले ज्यादा क्षत्रिय मिलेंगे। ऐसे वैश्य जाति वाले में और ऐसे शूद्रों में, तो समुदाय मिलने पर वो बात आज है और आज भी नष्ट नहीं हुई है। इस वास्ते अपने अपने कर्तव्य का कर्म कर्तव्य करे, पालन करे, और स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, उसमें अभिरति हो। कर्म में एक अभिरति होती है, एक कर्म में आसक्ति होती है। तो कर्म में अभिरति है वो कल्याण करने वाली है, आसक्ति है वो पतन करने वाली है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति नहीं होती है तब वो योगारूढ़ होता है। और यहाँ कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य कर्म में अभिरत मनुष्य सम्यक सिद्धि को, परमात्मा की प्राप्ति को कर लेता है। तो अभिरति नाम क्या है कि जो कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से हो, मन लगाकर किया जाए, उसमें एक चित्त में प्रसन्नता होती है, उसका नाम है अभिरति। और आसक्ति ऐसा काम करो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतना हमारा काम हो जाएगा, ऐसे क्रिया की सिद्धि और फल की सिद्धि की तरफ जो लक्षण लक्ष्य रहता है वो आसक्ति होती है, वो कर्म में आसक्ति है। तो कर्म में आसक्ति है वो बंधन करने वाली है, अभिरति है उन्नति करने वाली है। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, वो अभि सिद्धि को स्वकर्म निरता सिद्धि यथाबंधति, अपने कर्तव्य में लगा हुआ सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है कि यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं तपम स्वकर्मणा तवभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ख्याल करने एक मार्मिक बात, हमें तो गीता भर का ये सिद्धांत और शास्त्रों का सिद्धांत मालूम देता है कि मनुष्य केवल अपना कल्याण करे, व्यवहार सब करता हुआ अपना उद्धार करे, इसमें ही सबका अन्वय है, सब उधर ले जाना चाहते हैं शास्त्र। तो भगवान कहते हैं स्वकर्म से कैसे सिद्धि प्राप्त होता है, तो मूल क्या है परमात्मा, एक परमात्मा एक प्रकृति, प्रकृति से चला हुआ संसार परमात्मा के शासन में रहने वाला। तो जब जीव का मुख परमात्मा की तरफ होता है तो उसका उद्धार होता है, और इसका उद्देश्य लक्ष्य संसार होता है, भोग और संग्रह होता है, तो उसका पतन होता है। तो अपने अपने कर्तव्यों को करे, परंतु लक्ष्य क्या रखे कि यथा प्रवृत्ति भूतानाम, इन प्राणियों की जिससे प्रवृत्ति हुई है। पंद्रह कह रहे यथा प्रवृत्ति प्रसा पुरानी पुरानी ये प्रवृत्ति प्रसिद्ध हुई है जिस परमात्मा से, ऊर्धमूल जो परमात्मा से है उस परमात्मा से संपन्न हुई है। स्वकर्मा तम से वहां बता तमे वाद्यम पुरुषम प्रबद्य उसके मैं शरण हूँ, यथा प्रवृत्ति प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरानी। तो ऐसे प्रवृत्ति जिससे हो रही है, मानो प्रकृति भी कार्य करती है जिसकी अध्यक्षता में, जिसकी सत्ता स्फूर्ति लेकर कार्य करती है, तो उसमें जिससे प्रवृत्ति होती है, जिससे सब संसार व्याप्त है, संपूर्ण वर्णों में, आश्रमों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में और संपूर्ण पदार्थों में जो परिपूर्ण है वो परमात्मा। स्वकर्मणा तमेभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे। जैसे घर पर अतिथि आता है तो उस आदर सत्कार करते हैं, तो वो जो हनुमान साधक का शरीर है वो शरीर तो किसी वर्ण का आश्रम का वो एक समान होगा, परंतु उसमें जो भाव है और भीतर ऊंचे वर्ण का और ऊंचे भाव युक्त है उसका आदर सत्कार विशेष होगा। तो वो आदर विशेष होगा स्थूल शरीर की अपेक्षा, भीतर के भाव भीतर की स्थिति जो चीज है वो आदरणीय विशेष होती है। तो अपने अपने कर्मों द्वारा उसका पूजन करे, तो मूल में सब जगह परमात्मा है, उस परमात्मा को देख कर हम पूजन करें। तो कैसे ही नीच शरीर है, ऊंच शरीर है, कैसा भी है, पर परमात्मा सब में है। तो लक्ष्य हमारा परमात्मा का पूजन का हो। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा उसकी अभ्यर्थना करें, लक्ष्य हमारा परमात्मा रहे। जैसे मंदिरों में जाते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं, तो वहाँ लोग कहते हैं ये तो मूर्ति पूजन करते हैं। मूर्ति पूजन नहीं करते हैं हम, ठाकुर जी का पूजन करते हैं। मूर्ति में सशंख चक्रम सकीरी टुकुंड ऐसे भगवान के बोलते हैं, स्तुति के श्लोक बोलते हैं, भगवान के भाव उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले आप हो ऐसा कहकर स्तुति करते हैं। ये परमात्मा की स्तुति होती है, वो मूर्ति की नहीं। मूर्ति हो तो अमुक पत्थर में पैदा हुए, अमुक ने घड़ा तुम्हारे को, अमुक ने नागरिया बैठाया, ऐसा हम कहते तो मूर्ति की पूजा होती, पर मूर्ति की नहीं करते हम, भगवान का पूजन करते हैं। लोग कहते हैं हिंदू मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक हिंदू नहीं है। मूर्ति पूजक तो वे है जो श्रृंगार करते हैं, सुंदर मकान सजाते हैं, सुंदर बनते हैं, ऐसा जो करने वाले वे सब मूर्ति पूजक है। तो मकान सुंदर बनाना मूर्ति बनाना है, अपने सही वो ठीक ठीक यूँ करके यूँ करने वही मूर्ति पूजा है। तो अतर तेल पुले लगा कर सोड़ा अच्छा कपड़ा पहन करना ये मूर्ति पूजा हुई, ये ठाकुर जी की पूजा नहीं, ये तो मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा नहीं करते हिंदू, तो ठाकुर जी का सब संसार का संसार की सेवा करे, वहां भी जिससे पैदा हुआ जिससे व्याप्त है। स्वकर्मणा तमेभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना, संपूर्ण वर्णों में, सब आश्रमों में, स्त्री पुरुष आदि व्यक्तियों में परमात्मा है, उसको लक्ष्य लेकर पूजन करना है, तो वो परमात्मा की पूजन होता। इस वास्ते भक्तों की पूजन में बताया कि वहाँ भगवान का पूजन होता है, उनके हृदय में भगवान विशेषता से विराजमान है। जैसे गर्भवती माता को बढ़िया भोजन आदि दिया जाए तो उसको दिया जाए तो उसके गर्भ का पोषण आप साफ होता है, ऐसे ही भगवान सब में व्याप्त है, उनको आदर किया जाए भगवान के लक्ष्य से तो भगवान की बड़ी प्रसन्नता होगी, वे पूजे जाएंगे परमात्मा। तो ऐसे अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करके और सिद्धि को प्राप्त होता है। इस वास्ते भगवान का पूजन सब में करना चाहिए। श्रेयांश धर्म और विगुण, परंतु अनुष्ठान अपने अपने धर्म का, जो जो जिस वर्ण के लिए जो धर्म बताए हैं, जिस आश्रम के लिए धर्म बताए हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे। पूजन की सामग्री शास्त्रों में मूर्ति पूजा करे, वहां पर मूर्ति में परमात्मा का पूजन करे, वहां पूजन का विधान बताया है, तो शक्ति का पूजन और तय है, शिव का पूजन है, विष्णु भगवान का पूजन है, गणेश जी का पूजन है, अलग अलग पुष्प है, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग वस्त्र है, ऐसे उनकी विधियाँ अलग अलग है उन देवताओं के लिए। और यहाँ अपने कर्मों से सबका पूजन करे तो यहाँ विधि क्या होगी? यहाँ विधि होगी अपने अपना कर्तव्य उस कर्म के द्वारा। जैसे पढ़ाने वाला पढ़ाने के द्वारा उनका पूजन करे और पढ़ने वाला पढ़ाई करके परमात्मा का पूजन करे, सुनाने वाला सुनाकर परमात्मा का पूजन करे, सुनने वाले सुन करके परमात्मा का पूजन करे, भोजन करने वाला भोजन करके भगवान का पूजन करे, भोजन कराने वाला भोजन करा करके भगवान का पूजन करे, अपने अपने कर्म से परमात्मा का पूजन करे। इस वास्ते जहाँ कहीं आदर सत्कार करे तो भगवान कहते हैं ते भी मामेव कंद मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु तो यजंती अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्व पूजन करे। अविधि पूर्व क्या कि मैं सब में हूँ, न तू माम अभिजान तत्व अतस्वंती थे, हम ही सर्वयज्ञ नाम भोगता च प्रभु रेव च, जितने यज्ञ है तप आदि भोगता मैं हूँ, परंतु वे मेरे को नहीं जान करके एक व्यक्ति विशेष में करते हैं, तो इस वास्ते वो अविधि पूर्व पूजन होता है। और परमात्मा को सब में समझ करे तो विधि पूर्व हो जाएगा। कुत्ते को रोटी भी डालो तो बात रहे इसमें भगवान है, गरीब से गरीब दुखी है ऐसा आ जाए, कोई पापी भी आ जाए और भूखा मरता हो तो उसको अन्न दिया जाए इसमें परमात्मा है, तो दुखी से दुखी पापी से पापी में भी परमात्मा तो है ही, तो परमात्मा समझ करके उसका पूजन किया जाए तो परमात्मा का पूजन होता है, ये विधि पूर्व होता है। इस बात से स्त्रियांश्वर्मो विगुणा, अपने धर्मों में गुणों की कमी है तो भी गुणों की कमी ऊपर से दिखने वाली है, अपने तो पूजन करने की विधि ठीक तरह से वो विधि विधान से बढ़िया सामग्री है, तो उसको लेकर के आदमी को अपना ऐसा नहीं चाहना चाहिए कि हमारे गुणों की कमी है, उसके धर्म में बहुत है। श्रेयांश्वर्म विगुणा पर धर्मा सुनुष्ठिता, दूसरे धर्म में अच्छी तरह से अनुष्ठान किए जाए उससे भी अपने गुणों की कमी वाला भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वकर्मना तो मैं धैर्य से अपने कर्मों से पूजन करना है, अपना भाव पूजन करने का है, सामग्री उसको जन्म के अनुसार होगी। स्वभाव नियत कर्मा कुर्मना, स्वभाव नियत करे, स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने आज्ञा दे दी, ये ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए वैश्य और ये शूद्र के लिए, तो स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने नियत कर्म कर दिए, वो कर्म करता हुआ वो पाप का भागी नहीं होता। अब ध्यान देना, नियत कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं होता ये क्यों कहा? अरे नियत कर्म है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार है, फिर पाप कैसे लगेगा? पाप की प्राप्ति ही नहीं तो निषेध कैसे हुआ? कायदा है प्राप्त हो सत्याम निषेध, प्राप्त हो जब निषेध किया जाए। तो कहते हैं कि अर्जुन खुद युद्ध करने से श्रेय भोगतुम भिक्षम भी लोगे, भिक्षा मांगना श्रेष्ठ मानता है, युद्ध है घोरे कर्मणि किंग नियोजयसि, इन कर्म को घोर कर्म समझता है, तो भगवान कहते हैं भैया घोर नहीं होता है, जो शास्त्र की आज्ञा अनुसार नियत कर्म होता है। आपसे अधिक से आसोपन्नम स्वर्ग द्वार मुपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम, ये जो युद्ध प्राप्त हुआ है अपने आप और शास्त्र विहित है, निषिद्ध रीति से नहीं, अन्याय नहीं, न्याय पूर्वक है, तो ये तो अपना काम करना चाहिए। स्वभाव नियत कर्म कुर्वन्ना अपनोति किल विषम, स्वभाव नियत कर्म करता पाप का भागी नहीं होता। यहाँ गुरुजनों के मारना भी होगा, हत्या करना, उदन भर तलवार चलाना, माथा काटना मनुष्यों का, वो करता हुआ पाप का भागी नहीं होता। स्वभाव नियत है, स्वभाव के अनुसार जो सास ने आज्ञा दे दी नियत कर दिया वो पाप का भागी नहीं होता। इस बार से श्रेयान स्वधर्मो बिगड़ना पर धर्मा सुनिश्चित, सहजन कर्म कौन थे सदोष मिन त्यजेत, वो सहज कर्म है। सहज का मतलब मानो साथ पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मणोचित कर्म उनके साथ है, क्षत्रिय के पैदा हुआ तो क्षत्रियोचित कर्म उनके साथ ही पैदा हो गया, वेशी हुआ तो वेशी के साथ ही वेशी कर्तव्य पैदा हुए, शूद्र था शूद्र के साथ ही शूद्र कर्तव्य हुए। इस वजह से सहज ज्या प्रजा श्रेष्ठ पूर्ववाच प्रजापति, तीसरे अध्याय के दसवें श्लोक में प्रजापति ब्रह्मा ने सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, यज्ञ के सहित प्रजा पैदा करी, तो यज्ञ क्या? अपना कर्तव्य कर्म, स्वकर्मणा तमे भ्यर्थे हुआ असन हुआ ना, यश देव पूजा संगति करण दाने, उसे पूजन करना, तो अपने सामग्री उसे पूजन करना है, तो वो यज्ञ की सामग्री के सहित पैदा किए सभी, मतलब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दुनिया का उद्धार करो, दुनिया का सुधार करो, दुनिया की सेवा करो, दुनिया को सुख पहुंचाओ। तो सही है क्या प्रचार करो, वो सहज कर्म हुए, साथ पैदा हुए। सहजन कर्म कौन थे, सहज कर्म त्यागना नहीं चाहिए। सदोष मित उसमें दोष आता तो भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सहज कर्म है वो करता हुआ किल्बिश को प्राप्त नहीं होता, वो साथ ही उनके वही वही कर्तव्य है भाई। तो सहजन कर्म कौन थे, सदोष में सर्वारंभा ही दोषे न धूमे नागदिवाव्रता, क्योंकि दोष नहीं लगा सर्व आरंभ। कोई भी आरंभ करोगे आप तो उस आरंभ में कुछ न कुछ त्रुटि होगी और दोष आ जाएगा। गीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि आग सुलगाओगे तो पहले धुआं होगा। कोई कहते कि धुआं होने ही नहीं देंगे, आग सुलगा देंगे, कैसे करोगे? जहाँ घास फूस लाकर लकड़ी लगा आग सुलगा धुआं हो जाएगा। ऐसे कुछ भी आरंभ किया जाएगा तो आरंभ में कुछ न कुछ दोष आएगा। तो सबके सब आरंभ में दोष आता है, फिर अपने धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का अनुष्ठान करने में वो स्वाभाविक तो दोष सब में आते हैं, और अपने धर्म का त्याग दूसरा करने से जो कि निषिद्ध है तो पाप और लगेगा। पर धर्म कौन सा होता है, जो हमारे लिए विधि नहीं है, विहित नहीं है, और के लिए है, हमारे लिए निषिद्ध बताया है, वो पर धर्म होगा। सामान्य जो समो दमस तप सोचम आदि लिया है ये सामान्य धर्म है ब्राह्मण के, तो ये सामान्य ब्राह्मण के है। और भी देवी संपत्ति के जितने गुण हैं सब मात्र मनुष्य धारण कर सकते हैं, वे कोई भयावह नहीं है। इस बात भयावह नहीं दिया, तीसरे अध्याय में परधर्मो भयावह दिया है। तो वहाँ भिक्षा मांगने की बात कही थी अर्जुन ने, इस वास्त वहाँ ऐसा कहा यहाँ अपने अपने धर्म का पालन करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उस पाप नहीं लगेगा। और दोष तो आता भी, आरंभ में दोष आते हैं, पर दोष आवे तो इस बात से क्या अपने कर्तव्य कर्म न करें, तो कर्तव्य दोष आता, कुछ कुछ आता है, खाने पीने आदि में होता, चलने फिरने में भी हिंसा होती है। तो सर्वथा कर्म करो तो उसमें हिंसा रहे सर्वथा हो नहीं सकते। इस बात भागवत में हिंसा जीतने के लिए कहा है, हिंसाम कारा काया जनी हया, शरीर आदि की यह चेष्टा है जब कम करो, अहिंसा रखनी है तो क्रिया करोगे तो हिंसा कुछ कुछ हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, इस बात से संयम रख करके काम करो। ऐसे भगवान ने ये चारों वर्णों के धर्म बताए। इससे आगे सांख्य योग का प्रकरण चलता है, इसमें कुछ बातें कहनी है। अभी बड़ा एक झमेला है कि जाति जन्म से मानना चाहिए कि कर्मों से, तो इसमें दो मत है खास। शास्त्री अपने पुराना मत है, वो तो कहता है जन्म की प्रधानता है। जाति शब्द कह दिया तो जाति शब्द है जनि प्रादुर्भाव धातु से ही बनता है, इस वास्ते जन्म की ही प्रधानता है। परंतु कई ऐसा कहते हैं कि नहीं, जन्म की प्रधानता नहीं है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार आदि जो उच्यते वेद पाठात भवित विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो संस्कार से उद्विज होता है, संस्कार करने से उद्विज बना आ जाता है, ऐसा मान करके और शरीर को जिन उदरा ये भी काम करते हैं। तो दोनों तरह की बातें मैंने सुनी है और थोड़ी थोड़ी पुस्तकों में पढ़ी है, पूरा अध्ययन हमारा है नहीं। परंतु इसमें निर्णय क्या है वो अपने मैं कह देता हूँ, ये मैं छोटे मुंह बड़ी बात है, मैं मेरे मन की बात कहता हूँ, कहता हूँ शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार, परंतु समझ तो मेरी रहेगी, इस वास्ते त्रुटि होगी वो मेरी और अच्छी बात होगी शास्त्रों की, ऐसा उसमें निर्णय कर लेना। कहीं कहीं लिखा है कि वो ब्राह्मण है और उसमें ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है, बड़े नीचे कर्म है तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। ये वन पर्व में महाराज युधिष्ठिर और नहुष सर्प बना हुआ है, उनके संवाद में ये बात आती है, उसमें कर्म की प्रधानता मानी है। शूद्र है उसमें कर्म अच्छे हैं तो उसको शूद्र शूद्र नहीं मानना चाहिए, शूद्र रूप का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और कई जगह पुराणों में ऐसी बातें आती है कि जिसके अच्छे आचरण है वृत्त में वही कारण उनका बर्ताव है, वही उनके ऊंच नीच होने में कारण है, ऐसे उसने बर्ताव की बड़ी प्रशंसा करी है और पूजनीय है, आदरणीय है वो जिसके आचरण ठीक है। जन्म से साधारण जन्म है तो भी, और ब्राह्मण के घर जन्मा है तो भी अगर वह आचरण ठीक नहीं है तो उसका वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। मनुष्य स्मृति में लिखा है वो ब्राह्मण है, बिडाल वृत्ति है, मारदार वृत्ति है और बक वृत्ति है। जैसे बिल्ली होती चुपचाप आऊं करती रहती है, जान वगैरह बट दही मरेली भाग जाती है। बगुला बड़ा धीरे धीरे चलता है, मछली को पकड़ लेता है। ऐसे ब्राह्मण होकर जो दूसरों का हक लेता है, दूसरों खड़ा चाहता है, उसको बिडाल वृत्ति और बक वृत्ति का ऐसा भी ब्राह्मण है, उसका आदर नहीं करना चाहिए जबान मात्र से, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा उनका तिरस्कार लिखा, उनका आदर लिखा, बिल्कुल विरुद्ध बात। ये क्या है? तो क्या है वो वास्तव में? तो भाई संत जाने, महात्मा जाने, ऋषि महर्षि जाने, ग्रंथों के बनाने वाले जाने। हमारे जो असर पड़ता है पढ़ने से वो मैं बताता हूँ। मनुष्य का जन्म है वो स्त्री का हो गया, पुरुष का हो गया। पुरुषों में ब्राह्मण के, क्षत्रिय वे, शूद्र के घर जन्म हो गया, अंतज के घर जन्म हो गया। तो जन्म हुआ है ये पुराने कर्मों का फल बताया है। पतंजलि योग दर्शन में तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, जन्म होना, आयु पाना और वहाँ पर सुख दुख आदि की परिस्थिति का सामना करना, प्राप्त करना, ये कर्म का फल होता है। तो पहले जन्म के कर्मों के फल के कारण से उसका यह उस वर्ण में जन्म हुआ, तो ये पहले जन्म का कारण है। अब यहाँ जन्म होने पर मनुष्य जन्म की बड़ी शास्त्रों ने महिमा गाई है। दुर्लभ हो मानुषो देह लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् भव संभवान् ते दुर्लभम त्रयमेव एतत्। ऐसे जगह जगह दुर्लभता आती है तो वह मनुष्य जन्म मात्र की बड़ी प्रशंसा है। उस मनुष्य जन्म में आ गया तो पहले जन्मों से नीचे वर्ण में जन्म हो गया, परंतु यहाँ अपना काम करके ऊंचा किया तो वो नीचा कैसे माना जाए? एक बात याद है कि माना जाए तो उसकी विशेष बहादुरी माननी चाहिए। साधारण वर्ण में हो करके अपने अपने कर्मों से, अपने गुणों से कितने उन्नति कर लेनी तो उसकी तो विशेष बहादुरी है, श्रेष्ठता है। तो उसका निरादर तिरस्कार कैसे हो? आदर होना चाहिए, इस वास्ते समाज में भी आदर हो। और दूसरी बात और है, ये जो अभी जन्म है, बीच में एक बात कह जाता हूँ, याद आ गई। जन्म की प्रधानता रोटी बेटी में है, भोजन आदि करना हो, कन्यादान लेना देना हो तो उसमें जन्म की मुख्यता होगी, क्यों? स्थूल शरीर की मुख्यता है। स्थूल शरीर का जन्म हुआ तो स्थूल शरीर की मुख्यता से जितना स्थूल शरीर को लेकर व्यवहार है उसमें उस जन्म की प्रधानता है। परंतु आचरण को लेकर के जो आदर सत्कार होता है वो उस आचरण को लेकर के है। ऐसे उसके भाव परमात्म तत्व को जानना है और भगवान की भक्ति करता है तो उसमें तो महाराज बहुत महिमा लिखी। 12 गुणों युक्त ब्राह्मण हो परंतु भगवान से विमुख है और जिसके मुख में भगवान का नाम है चांडाल है, वो भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया। भागवत आदि कहते विप्राद विष्णु गुणाद अरविंद नाब पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठ, बर नहीं बर बरियान वरिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो वो भगवान की यजीव भाग रहे बरतते नाम, तो भी आपका नाम जिसके जीव पर है और भगवान की तरफ चलता है तो भगवान के भक्त को ऐसा वर्ण का नहीं माना गया है, उसको माना है कि ये तो भगवान के वर्ण का हो गया, भगवान के जाति का हो गया, वह ही हो गया। वो उसका वो जमराज के यहाँ भी खाता नहीं रहता, वो परमात्मा की तरफ चलता है, उसकी बहुत महिमा है। पर आचरण की महिमा भी कम नहीं है। परमात्म तत्व का बोध हो जाए वो भी शरीर के लेकर के नीचा नहीं होता और भक्ति होते नीचा नहीं। आचरण भी जिसने अच्छे कर लिए, भाव अपने अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, उनका भी समाज में आदर है और होना चाहिए। क्यों है? तो बात यह है कि पहला है कर्म जिसका फल तो जन्म हो गया, अब जन्म में होकर उसने अच्छा काम किया तो वो उनकी अच्छाई होनी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, पूर्व कर्म के अच्छे थे और यहाँ आकर नीच कर्म करता है तो बहुत गलती करता है, उसको अपने सावधान होकर ब्रह्मत्व की रक्षा कर लेनी चाहिए। अच्छे से अच्छे कर्म करके शुद्ध निर्मल ब्राह्मण बनना चाहिए। ये ब्राह्मण का शरीर मिल गया, अब इतना क्षुद्र कामाएं से तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए नहीं है ये, यहाँ कष्ट सहना, तपस्या करना और मरने के बाद अनंत सुख को अभी जन्म जीते जीते ही मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो ये काम करना अभी का है, तो ये उसको अभी करना चाहिए। इस वास्ते जन्म कहीं भी होगा स्त्रिया है तो वे भी अगर करे, अच्छे आचरण लावे, अच्छे भाव लावे, तो बहुत श्रेष्ठ बड़ी बड़ी बन सकती है। मंदालसा जैसी हुई है, माता कुंती है, माता मंदालसा है, और लक्ष्मी जी की माता सुमित्रा है, आदि आदि बड़ी अच्छी अच्छी माताएं हुई है, ध्रुव जी की माता आदि, तो इन्होंने कैसा उपदेश दिया है बच्चों को, कितने ऊंचे बढ़ा दिए, तो ये माताएं कितनी आदरणीय हो गई। अब माताओं में सीता भी हुई है, लक्ष्मी जी है, राधा जी ये भी है, और इसलिए हमें सूर्पणखा भी है, ताड़ना भी है, ताड़का भी है, तो ऐसे होते हैं। ऐसे पुरुषों में भी होते हैं, बड़े बड़े पंडित श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं, रावण ऐसे भी होते हैं, तो वो अपने कर्मों के कारण से श्रेष्ठ और निकृष्ट हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये बड़ी भारी एक श्रेष्ठ कृपा शास्त्र ने की है कि जन्म तुम्हारा हो गया तो हो गया, तुम घबराओ मत, यहाँ ही तुम अच्छे आचरण और अच्छे भाव रख करके ऊंचे उठो तो तुम ऊंचे उठ जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये स्वतंत्रता दी गई है, इस वास्ते हमें तो ठीक मालूम देते हैं कि मर्यादा बड़ी बढ़िया है, बड़ी उत्तम है। मर्यादा के अनुसार खान पान आदि जो व्यवहार हो वो शरीर की प्रधानता को लिया किया जाए, और हृदय का भाव ऊंचा है वो हृदय से आदर ऊंचा होना चाहिए। शरीर से ऊंचा है तो शरीर का आदर होगा, हृदय से ऊंचा हो तो उसका हृदय से आदर होगा। आज साधारण वर्ण का कोई बड़ा अवसर बन जाता है तो उसको कुर्सी दी जाती है, तो पद के आदर दी जाती है, उसको जाति से नहीं दी जाती, पद मिल गया। इस तरह से पद मात्र से भी ऊंचा आचरण होता है, जिसके भाव आचरण अच्छे बना लिए उसका भी भावों के अनुसार उसका भी निरादर नहीं होना चाहिए, परंतु वो अच्छे भाव वाला आदर चाहता नहीं, वो तो अपने परमात्मा की तरफ चलता है। तो ये मान है, आदर है, प्रशंसा है, ये तो महान विघ्न है, इस वास्ते इनका वो त्याग करता है, तो त्याग करता और वो श्रेष्ठ हो गया। इस तरह से अपने वर्ण में, आश्रम में और स्त्री पुरुष आदि शरीर शरीरों में रहते हुए भी श्रेष्ठ उत्तम आचरण करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इस वास्ते हताश कभी नहीं होना चाहिए कि हमें तो जाति नीची है, कुल भी नीचा है, हमारा शरीर भी नीचा है, ऐसा है, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान की कृपा से क्या नहीं कर सकते, बड़ा अधिकार मिला है, ये मनुष्य शरीर में विवेक दिया है भगवान ने, समझने की शक्ति, तो परमात्मा की तरफ चलने के लिए तो पशु पक्षी वृक्ष आदि इनके लिए भी भगवान की तरफ से बनाए नहीं है, पर उनमें वो योग्यता नहीं है, वो अधिकार नहीं है, और मनुष्य मात्र में अधिकार है, योग्यता है, विवेक है, तो अपना ये कल्याण कर सकते हैं। इस वास्ते कल्याण करने में, उद्धार करने में, ऊंचा उठने में कभी भी आदमी को हताश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ये बनाया, आपको वर्ण धर्म की बात बताई 8 श्लोकों में, और उन कर्मों के द्वारा पूजन भगवान का करे, तो निष्काम भाव रहे तो संसार से ऊंचा उठ गया, और भगवान का पूजन किया तो भगवान की तरफ चला गया। ये दो ही बात है, संसार के संबंध विच्छेद से दुख निवृत्त हो जाता है, और परमात्मा के साथ एक न से आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो दुखों की मूला विद्या से दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति करना मनुष्य का धर्म है, तो वो परमात्मा की तरफ चलने से विशेष शांति आनंद विलक्षणता होती है, उसको ये प्राप्त कर सकता है। अगाड़ी सांख्य योग का विषय चलता है, 49 से 55 तक ये 7 श्लोक है, इनमें सांख्य योग का वर्णन है। तो पहले सांख्य योग का 12 से 40 तक हुआ, उसमें विचार द्वारा राजस तामस राजस भावों का त्याग कर सात्विक ग्रहण करे, इसकी दृष्टि से वो प्रकरण बताया गया जिससे गुणातीत हो जाए। अब उसमें उपासना बताते हैं, जैसे कर्मयोग में केवल निष्काम भाव का 12 तक वर्णन हुआ, या 41 से 48 तक उन कर्मों को भगवान का पूजन करके श्रेष्ठ बन जाए, ऐसे सांख्य योगी ध्यान के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करे, वो प्रकरण आता है। तो वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए 3 बात है उस सांख्य के अधिकारी के लिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जेतात्मा विगतस्प्रिय। किसी जगह बुद्धि आसक्त नहीं होनी चाहिए, आसक्ति होगी तो तत्व समझ में नहीं आएगा, जड़ता का आदर हो जाएगा तो चिन्मय तत्व समझ नहीं सकेगा ही नहीं। इस वास्ते असक्त बुद्धि सर्वत्र और जितात्मा इंद्रिया अंतःकरण शरीर अपने बस में नहीं होगा, कहीं लुटक जाएगा तो तत्व को कैसे समझाएगा, वो तो जड़ता का आदर हो जाएगा। विगत स्प्रिय और स्प्रिया मन में नहीं, अमुक अवस्था मिले, अमुक व्यक्ति मिले, अमुक वस्तु मिले, ये भीतर जो स्प्रिया है वो न रहे, ये स्प्रिया भीतर होगी तो वो तो उसमें फंस जाएगा। तो तीन गुण उसमें चाहिए, लक्षण चाहिए, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्प्रिय, नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासी नादि गच्छति। वो परमा नैष्कर्म सिद्धि, निष्कर्मता, जिसमें कर्म अकर्म हो जाते हैं, कर्म बिल्कुल लागू नहीं होते, ऐसी निष्कर्म परमा निष्कर्म सिद्धि वो संन्यास के द्वारा प्राप्त कर ले, मतलब सांख्य योग के द्वारा वो प्राप्त करे। ये बात बताई। अब कहते हैं सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है वो क्रम में बताओ, तुम समझो। भगवान निबोध कहते हैं, आज्ञा देते हैं, समझो। तो सिद्धि प्राप्त कर क्या लेना चाहिए, सिद्धि नाम अंतकरण की शुद्धि, कौन सी, ये जो अभी गई असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय, ये सिद्धि हो गई, संसार से ऊंचा उठ गया है, संसार में फंसा हुआ नहीं रहा, तो ये अधिकारी हुआ। ये सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म, अब ब्रह्म को प्राप्त कैसे होगा, तो उस ब्रह्म को प्राप्त होने की बात कहता हूं, मतलब कि जड़ता से ऊंचा उठा और चिन्मयता को प्राप्त हो जाए, वो जिस प्रकार से वो निबोध मेरे सुन, तो क्या करे, बुद्धिया विशुद्धया युक्त। अब ध्यान देना भाई, बुद्धि और धृति, इसके जो सात्विक राजस तामस तीन तीन भेद बताए, 29 उठका ना, बुद्धिर भेदम धृतेश गुण तस्त्रिविधम श्रेणु, ऐसे क्या करे 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक तीन तीन श्लोकों में बुद्धि और धृति के गुण बताए। उनमें सात्विक बुद्धि लेना, बुद्धिया विशुद्धया युक्त, तो बुद्धि वो राजसी तामस होती है, वो शुद्ध नहीं होती, वो अशुद्ध होती है, तो बुद्धि शुद्ध लेनी, वहां की बुद्धि अशुद्ध लेनी, और धृतिया धृति भी शुद्ध, धृतिया आधार यदि मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे न अभिविचारिण्य निष्काम भाव हो, व्यविचारी न हो, ऐसी धृति, तो बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च, अपने शरीर इंद्रिया आदि का नियमन करे। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्दादि के इनको विषय भोग दृष्टि से किसी विषय का ग्रहण न करे। राग द्वेषो विदुष्य च, विशेष ध्यान देना है हृदय में राग द्वेष न आने दे, ये तो ऐसे परिपंथ नो खास दो शत्रु विशेष तारे बताए। तीसरे अध्याय में इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत से तो यह से परिपंथिन, ये राग द्वेष ये शत्रु है, चलने में ये फंसा देते हैं, राग हुआ तो फंस जाए, द्वेष हो तो फंस जाएगा, ये दो शत्रु है राग द्वेष हो विदेश, इनको तो बिल्कुल अपने से निकाल देना चाहिए भीतर से, कैसे निकले तो ये पहले बताइए बात, न द्वेष या कुशल कर्म कुशल अनुसजते त्यागी सत्य समावेश को मेधावी सन्न संशया। मानो ग्रहण और त्याग, हम जो ग्रहण करें तो राग पूर्वक नहीं और त्याग करें तो द्वेष पूर्वक नहीं, हम करने शास्त्र प्रमाणते कार्या कार्य कर्तव्य कर्तव्य के लिए शास्त्र को सामने रखें। जैसे रोगी है उसको दवाई दी जाए तो वो क्या खावे क्या नहीं खावे, इस विषय में आयुर्वेद शास्त्र को सामने रखे, रुचि को सामने न रखे, रुचि में तो कुपथ्य भी हो जाता है, कुपथ मांग जिन रुचि व्याकुल रोगी तो वो तो कुपथ मांग लेगा, तो वहाँ रुचि की प्रधानता नहीं, आयुर्वेद शास्त्र कहता है वैसे चलो। तो मनुष्य मात्र में विवेक की प्रधानता है, ये कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक कर सकता है, इस वास्ते शास्त्र ने विधि बताई, ऐसे ऐसे काम करो ऐसे मत करो, तो वो कब छूटेगा राग द्वेष, राग द्वेष छूटने से नहीं तो राग पूर्वक निषिद्ध काम में प्रवृत्ति हो जाएगी और विहित काम भी द्वेष हो जाएगा, उपराग से नहीं करेंगे। राग द्वेष बिल्कुल नहीं रखना है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है। राग द्वेष विमुक्ति से भी एकांतर है। ये ध्यान प्रदान वाले सांख्य योगी की बात कहते, लघुभाषी लघुवशील हो, भोजन युक्त आहार विहार से आहार है युक्त हो, न अधिक और न कम, ठीक ठीक रीति से, जिससे अपना काम चल सके। ज़्यादा खाने से आलस्य होगा और कम खाने से शक्तिहीन हो जाएगा, इस वास्ते युक्त आहार विहार, लघुसनशील हो, स्वभाव जिसका ऐसा है थोड़ा भोजन कर लिया अपना, जिससे कि अपना निर्वाह हो जाए। उसके लिए माप क्या है कि पेट याद ना आवे, अधिक बदलेगा तो पेट याद आवेगा बार बार, और भूख रहेगा तो याद आवेगा बार बार, इस बात भूख भी न रहे भार भी न हो, ऐसा पेट में भोजन दे दे। क्यों खुराक सबकी एक समान नहीं होती, और ये तो समान ही होता, ये तो अपने भाव ऐसे लघुवासी। यह तो वाक काय मानस काम काया वाणी और मन इनका संयत करे, तीन प्रकार तप बताया है ना, तो इनका संयम रखे। और ध्यान योग परो नित्यम, नित्य निरंतर ध्यान योग के परायण परमात्मा के चिंतन सब जगह परिपूर्ण है। सर्वभूतेश भाव अभिभक्तम विभक्तेश ज्ञानम, ऐसे ध्यान रहे सब जगह परमात्मा रहे। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, और संसार से वैराग्य होना चाहिए। रागी होगा ना तो सांख्य योग बनेगा। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच्य, अभिमान बल जो जबरदस्ती करता है हट साध्य करता है वो नहीं करना चाहिए। दर्प घमंड होता है, पास मेरे से ऐसी चीजें है, इतने कुटुंबी है, इतने व्यवहार, इतने हमारे धन है आदि, घमंड नहीं चाहिए। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम, और कामना चाहिए, क्रोध किसी पर गुस्सा आ जाए, इनका त्याग करें। और परिग्रह भोग बुद्धि से पदार्थों का संग्रह न करें, ये संग्रह कर लो फिर अपने काम आवेगी, फिर अपने काम लेंगे, सुख भोगेंगे, ऐसी बुद्धि से संग्रह न करें। विमोच, और संग्रह करे नहीं, नहीं जितनी अपने पास में वस्तु है उसमें ममता न रखे। व्यवहार करने के लिए अपने काम की है, मन मेरी है ऐसा उन पर हक न जमावे। ये मेरी है साहब, ये जगह ही मेरी है, ये थोड़ी मेरी है, चीज ही मेरी है, कब से तेरी? आपके पास घर में रहने वाला भी धन मेरा है, कब से और कब तक रहेगा? तो वो जो निर्ममा मानो भोग बुद्धि से संग्रह न करे, और अपने पास में है उसमें उसमें भी ममता न रखे। साधु आश्रम में दंड का मंडलू आदि जो कुछ होता है वो रखना है, काम लेना है, पर ममता उसमें भी ना हो। कोई ले जाए तो मौज वैसी, दे जाए तो मौज वैसी, रह जाए तो मौज वैसी, अपने आनंद रोने से क्या होगा? ममता रखने से दुख ज्यादा होता है। ममे से जो भवेद बंधा नमे से विमुच्यते, इस बार निर्मल शांत। और राग द्वेष ममता मिट जाने से शांति स्वरूप स्वतः आती है, स्वाभाविक शांति। आज जो कहते शांति नहीं मिलती, तो भाई कुछ न कुछ मन में चाहना है, किसी के साथ द्वेष है, किसी के साथ उसके लेना चाहते हो, कुछ कुछ मन में भरी है बात, शांति में शांति स्वतः ऐसे निर्मम शांत हो। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। सब जगह समान रीति से परमात्मा है ना, तो सम सर्वेश भूतेश ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षते, न तो चिंता होती है न इच्छा होती है, समस्त सर्वेश भूतेषु। अब क्या आते मद भक्ति लभते पराम, अब भगवान में परा भक्ति होगी, भगवान प्रिय लगेंगे, मीठे लगेंगे। आज परमात्मा मीठे क्यों नहीं लगते? कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं मीठी लगती है, इस कारण से भगवान का मिठास आता नहीं, सब जगह मौजूद रहता हुआ आता नहीं। गुड़ मार एक मूठी होती, उसको चबा लो तो चीनी का मिठास नहीं आएगा, मिश्री कंकर की तरह दिखेगी, चीनी रेता वजह दिखेगा मुँह में, उसका स्वाद नहीं आएगा, नमकीन नहीं अच्छा लगेगा, ना वो चीनी का पता नहीं। ऐसे ये गुड़मार है, भगवान के रस को मारने वाली गुड़मार बूटी है, संसार में रस लेने लगेगा, सुख लेने लगेगा, मौज करो, वो आएगा नहीं रस। जीव तो वही है परंतु तृष्ण हो, तृष्ण तो हो गया साहब, रस नहीं ले सकता। इस वास्ते संसार को रस लेता है, सुख लेता है। अब इंद्रिया मर गई, मन मर गया, उन्हें वो गुड़मार हो गया साहब। वो कहते क्या है भगवान की चर्चा में, क्या है कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, अब कुछ नहीं क्या है, जीव खराब हो गया भाई, भीतर का मन खराब हो गया। इस वास्ते को पहचान नहीं लगती। नहीं तो जो आदमी इसमें लगे हैं उनको पूछो आप, कितना विलक्षण आनंद है, कितना विलक्षण रस है, जो पारावार नहीं है, ऐसा अपार आनंद है। तो राग द्वेष विविध से विविध से भी लघुवासी ध्रुवभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, जब कुछ भी इच्छा द्वेष नहीं करता तो मद भक्ति में लगते पराम, मेरी भक्ति मिलती है भगवान में, मिठास पैदा हो जाता है परमात्मा सच्चिदानंद घर में, परा भक्ति हो जाती है, आकर्षण विश्लक्षण आचरण स्वतः हो जाता है। कितनी विचित्र बात, क्यों वो तो है ही विलक्षण आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप में आनंद क्यों नहीं आता, कि भाई आनंद के सुनमुख नहीं है, सन्मुख, सन्मुख होने से वो चीज मिलती है तो वो मौजूद रहते हुए भी, होते हुए भी नहीं की तरह, सन्न प्रसन्न पर पुरुष पूरा से होता हुआ भी नहीं की तरह ही था ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि उसमें सम्मुख नहीं होता, उसको उसको लेता नहीं, रस नहीं ले सकता। नाशवान जड़ पदार्थों को महत्व दे दिया, अब चिन्मय पदार्थ है, नित्य पदार्थ है, उनकी तरफ वृत्ति नहीं जाती। कामोपभोग परमा एतावत निश्चिता, बस पैसा कमाना, भोग भोगना, रात में इतना ही काम है हमारा, तो वही बस डेरा डाल दिया उतने में ही, तो बुद्धि मारी गई। अब भगवान की भक्ति कैसे मिली, सबसे राग द्वेष हट जाता है तब स्वतः भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान में आकर्षण स्वभाव की हो जाता है। और भक्तिया माम भी जानाती यावान यस्ताशु तत्वत, वो जो प्रेम होता है तब मैं कैसा हूं, कितना हूं, ऐसा मेरे को तत्व से जानता है। बातें सीख करके पढ़ करके हम उसका निर्णय करते हैं, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, वो सीखी हुई बात होती है। एक सीखना होता है, एक जानना होता है। तो जानना है अनुभव और सीखना है बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, अपने ग्रंथ पढ़ लिए, पढ़ा दिए, ठीक तरह से उपस्थित है, कोई पूछे तो उत्तर दे दे, विभीषण कर दे, ये सीखी हुई बात होती है। और अनुभव होता है तब जड़ता के संबंध विच्छेद होने से चिन्मयता में स्थिति होती है, वो होता है अनुभव, वो इन शास्त्रों के द्वारा नहीं होता है। शास्त्रों के द्वारा तो हम बाहर की बातों का निर्णय कर लेते हैं, बड़ी लाभदायक बात है, परंतु वो तो जब असत कहते हैं, असत संसार को, असत से अरुचि होने से सत की प्राप्ति होगी, असत का विवेचन करके ज्ञान कर लिया, इसमें सत की प्राप्ति नहीं होगी। एक सत है वो भी एक बुद्धि का विषय, असत है वो बुद्धि का विषय, ये व्यायाम हो जाएगा, कसरत हो जाएगी बुद्धि की, मन सत में प्रेम नहीं होगा, असत का त्याग नहीं होगा, असत का रस आता है, उत्पत्ति विनाशील वस्तु है परंतु उनके उपभोग में रस आता है, उसके संग्रह में एक सुख होता है, और हमारे निकल जाती है हाथों से तो दुख होता है, तो उसके तत्व को जान नहीं सकोगे, परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते, इधर ले जाता है। तो परा भक्ति मिलती है कब, कि जब राग द्वेष आदि अंतर्गत कूड़ा कचरा ये जो असत वस्तु है जिनका महत्व मिट जाता है, असत का महत्व है ये बांधने वाली चीज है, चीजा नहीं, चीजों का महत्व जमा हुआ भीतर में, इनकी इज्जत समझते हैं, बड़ा समझते हैं, ये महत्व परमात्मा तक नहीं चलने लगेगा। और ये निकलने के बाद मद भक्ति में लगते पराम भक्त्या माम अभिजान आती यावान यस्तास्मि तत्वत, जितना गुण जो कुछ हूँ मैं उसको भक्ति से ही जान सकता है, प्रेम होने से ही जान सकता है, संसार को जान सकता है, संसार से अलग होकर के संसार के साथ घुल मिल करके संसार को नहीं जान सकता, ऐसे परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा के साथ अभिन्न होने से दूर रह करके परमात्मा को नहीं जान सकता। कारण क्या है कि परमात्मा का ये अंश है, परमात्मा के साथ एक है, तो वास्तव में एक होगा तभी उसको जानेगा, और संसार से ये भिन्न है, संसार इससे भिन्न है, इससे अलग हो तभी संसार को जानेगा, संसार के साथ घुल मिल जाने से संसार का ज्ञान नहीं हो सकता। और परमात्मा से दूर बैठकर बातें करने से परमात्मा को बोध नहीं हो सकता। तो भगवान कहते भक्तिया माम अभी जानाती, भक्ति से मेरे को जानता है, तत्व से जान लेता है, ठीक तरह से जान लेता है, प्रेम हो जाता जान लेता है, क्योंकि उसकी वृत्ति जड़ता से ऊंची उठ गई, परमात्मा में तल्लीन हो गई और वो अपने घर पर पहुंच गया ठीक तरह से। नहीं मान सो जीव लोग उसका अंश था, उसी घर पर पहुंच गया ठीक, वहां घुल मिलकर ठीक एक हो गया अपना। फिर परा भक्ति तो मांग तत्व तो ज्ञातवा दुषते तदनंतरम, फिर अंतर पड़ता ही नहीं, तत्काल मेरी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति भगवान की दूर थोड़ी थी, जहाँ ये है वहां भी परिपूर्ण परमात्मा थे, परंतु जब तक संसार में रस आता था उसमें ठीक मानते हैं, तब तक होते हुए परमात्मा को जान नहीं सकते, होते हुए पास में रहते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते, उसी तत्व को हम जान लेते हैं तो निहाल हो जाते, विषते तदनंतर अंतर नहीं पड़ता। जहाँ ज्ञान हुआ प्राप्ति हुई, ज्ञान क्योंकि अज्ञान के कारण से दूरी दिखती थी, अज्ञान मिट गया वो दूरी हो गई, अब प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कर्मयोग बताया, ये सांख्य योग बताया। ये बात नारायण 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 नारायण, एक कामना होती है एक उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य होता है उसके सामने